તારીખ 24/8/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 567 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 580
માં ગ્રહણ કરે એવો વાત હતી નહીં और फिर भी खुद को मोह नहीं है राग नहीं है फिर कोई पहना देवे तो उपसर्ग हो गया
एक त्याग ज्ञान की कारण हुआ है त्याग ज्ञान की त्याग की कारण ज्ञान हुआ
है
त्याग त्याग हुआ है वो ज्ञान के कारण हुआ है ज्ञान के कारण त्याग हुआ है
त्याग के कारण से ज्ञान हुआ है या ज्ञान के कारण से त्याग हुआ है
त्याग के कारण से ज्ञान हुआ है
त्याग
त्याग पहले होता है बारहवें गुण स्थान में चारित्र पूर्ण हो जाता है बाद में ज्ञान होता है चारित्र कहाँ पूर्ण होता है बारहवां गुण स्थान में और ज्ञान होता है तेरहवें गुण स्थान में तो पहले कार्य हो गए पीछे कारण हो गए तो बने नहीं अगर कारण कार्य प्रतिपादन करना हो तो कारण पहले होता है कार्य पीछे होता है तो ज्ञान के कारण से त्याग नहीं ले सकते त्याग के कारण से ज्ञान ले सकते हैं हाँ ऐसी बात है तो लिखा है आगे भी लिखते हैं कि अत्यंत त्याग प्रकट हुए बिना अत्यंत ज्ञान नहीं होता वो कारण कार्य की बात आई कि नहीं आई उधर ऐसा नहीं लिखा कि अत्यंत ज्ञान कारण है और अत्यंत त्याग कार्य है ऐसा नहीं लिखा यहाँ कारण कार्य लिया के अत्यंत त्याग प्रकट हुए बिना अत्यंत ज्ञान नहीं होता ऐसा श्री तीर्थंकर ने स्वीकार किया है मेरी कल्पना की कोई बात नहीं है तीर्थंकर देव ने भी ऐसा ही स्वीकार किया है खुद का भी ऐसा ही हुआ है जिसको भी होता है उसको ऐसा ही होता है बहुत साफ बात है बहुत साफ बात आत्म परिणाम से जितना अन्य पदार्थ का तादात्म अध्यास निवृत्त होना उसे श्री जिनेन्द्र त्याग कहते हैं अब त्याग दो प्रकार का है वो अत्यंत त्याग की बात तो पूरी हो गई वाह अब एक दूसरे प्रकार का भी त्याग कहते हैं वो क्या है कि आत्म परिणाम जो है आत्मा के ज्ञान आत्मा के दर्शन आत्मा का स्वरूप आचरण वो आत्म परिणाम है उस परिणाम से अन्य पदार्थ का तादात्म अध्यास निवृत्त होना तदात्म रूप से परिणाम नहीं होना श्रद्धा का भी नहीं ज्ञान का भी नहीं और राग का भी नहीं चारित्र में राग का भी नहीं तादात्म नहीं है ज्ञानी का ज्ञान ज्ञानी का जो रागांश है वो भी अन्य पदार्थ के साथ तादात्म्यता नहीं करता स्वरूपाचरण चारित्र तो स्वरूप में परिणमित करता है इसकी तो बात छोड़ो श्रद्धा भी स्वरूप की है स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वरूप का है वेदन ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र भी आत्मा में परिणमन करता है लेकिन जो राग है वो अन्य पदार्थ के संबंध करता है वहां भी तादात्म नहीं करता अध्यासित नहीं होता अध्यासित होना मैंने क्या कि अपना स्वरूप को भूल करके तन्मय हो जाना उसको कहते हैं अध्यास अन्य पदार्थ के साथ तन्मय हो जाना जैसे खाने में कोई चीज मीठी लगी तो मीठापन में तन्मयता नहीं आएगी मीठापन चारित्र मोह का राग होएगा लेकिन वो राग भी तन्मयता नहीं करेगा क्योंकि उसमें अध्यास होता है और अध्यास होता है कि अज्ञान और मिथ्या को होता है ऐसा ज्ञानी को होता नहीं है इसलिए पुराणों में महापुरुषों के राग द्वेष के चारित्र जो बताया है वहाँ भी वही बताना है, तो एकत्व नहीं होता वहाँ उसको, क्या एकत्व नहीं होता, भिन्नत्व रहता है। जैसे कृपालु देव ने बिजनेस करते थे मुंबई में, बाजार में जा करके बिजनेस करते थे, अपनी गद्दी पे बैठ करके जो बिजनेस करते थे वहाँ उनकी उदासीनता बहुत थी, तो लिखते हैं कि हमको बहुत उदासीनता रहती है, तो एकत्व नहीं होता है वहाँ, एकत्व नहीं होता है, ऐसी स्थिति होती है। आत्म परिणाम से जितना अन्य पदार्थ का तादात्म अध्यास निवृत्त होना, निवृत्त होना मैंने नाश होना, अभाव होना, इसे श्री जिनेन्द्र त्याग कहते हैं। त्याग का प्रारंभ यथार्थ प्रकार से इस तरह से होता है, ऊपर जो लिया वो अंतिम त्याग का विषय लिया, अत्यंत त्याग का, पूर्ण त्याग का विषय लिया, अब प्रारंभ के त्याग की बात करता है कि प्रारंभ का त्याग कहाँ से होता है, कि चतुर्थ गुण स्थान से होता है, पंचम गुण स्थान नहीं लिया वहाँ, क्योंकि अध्यास का नाश होना चतुर्थ गुण स्थान में होता है, तो वहाँ से त्याग चालू हो गया, अध्यास छूट गया, पदार्थ में पड़ा तन्मयता छूट गई, तो यहाँ से त्याग चालू हो गया। बाहर में देखो तो त्याग नहीं है, बाहर में देखो तो त्याग वस्तु का पदार्थ का त्याग नहीं है, लेकिन अध्यास का त्याग है, तो वो त्याग सच्चा है, वो त्याग सच्चा है। वहां भी जिनेन्द्र का नाम दिया, उसे श्री जिनेन्द्र त्याग कहते हैं। वो तादात्म अध्यास निवृत्ति रूप त्याग, और तादात्म अध्यास का निवृत्ति रूप जो त्याग है, ऐसा त्याग होने के लिए वो यह बाह्य प्रसंग का त्याग भी उपकारी है। अब अंतर त्याग और बहिर् त्याग की चर्चा करते हैं कि अगर किसी को बाह्य पदार्थ का त्याग करने का भाव आया, तो उसके पीछे आशय वो होना चाहिए कि हमको अंतर से उसका त्याग करना है, अंतर से अध्यास मेरा छूट जाना चाहिए, तो मेरा बाह्य त्याग उपकारी है। अध्यास वैसा का वैसा रहे और बाह्य त्याग करे, तो वो त्याग सच्चा त्याग नहीं है, बहुत स्पष्ट है, अपने विषय में बहुत स्पष्ट है। उपकारी है माने कार्यकारी है, तो बाह्य त्याग भी उसको कार्यकारी है। फिर भी करुणानुयोग के हिसाब से देखो तो
चौथी गुण स्थान की भूमिका में त्याग कारी, पहली गुण स्थान वाली का वही त्याग कारी जाने
कहीं जाने,
पहले गुण स्थान वाली का वही त्याग कार्यकारी है
नहीं, कार्यकारी नहीं।
अब क्या हो जाए,
क्योंकि उसको अध्यास का त्याग नहीं हुआ। हम तो एक और बात कहना चाहते थे,
हाँ,
कि कोई जीव चतुर्थ गुण स्थान में आया,
हाँ,
और उसने मुनि दीक्षा ले लिया,
हाँ,
और सर्वसंग परित्याग कर दिया,
हाँ,
कुटुंब परिवार स्त्री वगैरह छोड़ दिया, धंधा व्यवसाय नौकरी जो भी था वो भी छोड़ दिया,
हाँ,
और जंगल में चला गया,
हाँ,
पंच महाव्रत 28 मूल गुण मुनि के जिनोक्त आचार है वो बराबर पालन करता है, और अध्यास का त्याग भी है।
ये विशेष बात है, अध्यास का त्याग,
तो भी उनको तीन कषाय का आश्रय चालू है, प्रत्याख्यान वर्णी और प्रत्याख्यान वर्णी और स्पंजन। तो यहाँ वायु त्याग उपकारी है ऐसा लिखा, इसका मतलब वो नहीं कि गुण स्थान आ जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, देखो कृपालु देव ने कहा है कि अध्यास का त्याग होने के बाद बाह्य त्याग करे तो उपकारी है। उपकारी है मैंने क्या है, तो उसका उतना पाप भाव उसका छूट जाता है,
बचता हो,
पाप भाव छूट जाता है और पुण्य भाव बहुत होता है।
हाँ।
पुण्य भाव बहुत होता है, लेकिन त्याग क्या इसलिए गुणस्थान आ जाए सो बात नहीं है। बहुत विद्वान लोग भी ऐसा आजकल मानते हैं।
हाँ।
अच्छे अच्छे विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि अगर सम्यक दर्शन हो गया, अध्यास का त्याग हो गया, एकत्व बुद्धि करता बुद्धि छूट गई, नाता हो गया, अब जो सम्यक दृष्टि व्रत अंगीकार करे तो उसको गुणस्थान आ जाए, ऐसी बात नहीं है। व्रत अंगीकार करने से गुणस्थान आ जाता है सो बात नहीं है। हाँ, उसका पाप नहीं होता, पुण्य बंद होता है, वो बात जरूर है, लेकिन गुणस्थान नहीं आता है।
तो
सवाल वो होता है कि फिर गुणस्थान कैसे आता है। गुणस्थान तो स्वरूप ध्यान में जितनी जितनी लीनता बढ़े और लीनता के कारण से वितरागता बढ़े और स्थिरता आवे, उसी के अनुपात में गुणस्थान बदलेगा। त्याग के अनुपात में गुणस्थान बदले ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में ऐसे जीव को द्रविलिंगी कहा है। क्या कहा है? द्रविलिंगी तीन प्रकार का कहा, एक मिथ्या दृष्टि, दीक्षा पालन करे बराबर महाव्रता जी तो भी द्रविलिंगी है, एक चतुर्थ गुणस्थान वाला हो गए और छठे सातवां में आए बिना दीक्षा और व्रतादि पालन करे तो भी द्रविलिंगी है, और एक पंचम गुणस्थान में हो गए लेकिन बाहर में नग्न दिगंबर मुनि हो गए हो और अंदर में स्थिरता पंचम गुणस्थान के योग्य हो गए तो भी द्रविलिंगी है, और छठे सातवें गुणस्थान में आ जाए, इतनी इतनी वितरागता आ जाए तो वो भावलिंगी है, इसके पहला भावलिंगी नहीं है, ऐसी बात है। वो बात सुगानी जी ने ध्रुव दृष्टि प्रकाश के तीसरे भाग में लिया है, वो बात लिया है। देखो वो इतना गुरुदेव का सत्संग नहीं मिला था, लेकिन दृष्टिपूर्वक जो ज्ञान खुल गया उसमें सब बातें समझ में आ जाती है। दृष्टि खुल गई और दृष्टिपूर्वक जो समय ज्ञान खुल गया उसमें बहुत सी बातें समझ में आ जाती है, सब बातों की मर्यादा समझ में आ जाती है, अपेक्षा से उसको सीखनी पड़ती नहीं, नहीं है, ऐसी बात है। केवल ज्ञान की लब्धि प्रकट होगी, जहाँ अनुभव हुआ केवल ज्ञान की लब्धि प्रकट होगी। पहले कुछ बोले नहीं बोले तो किसी को नहीं बोले तो बोले कि समझते नहीं है, ऐसा बात नहीं है, समझते हैं सब, बोलते नहीं है उतनी बात जरूर है, और समझा नहीं सके, इतना उघाड़ नहीं हुए तो दूसरे को समझा नहीं सके, लेकिन केवल ज्ञान की लब्धि हुई है और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए देखो ना समीसार में जयचंद जी ने कैसे कैसे न्याय काढ़े हैं, कैसे कैसे न्याय निकाले हैं भावार्थ में। सातवीं गाथा ग्यारहवीं गाथा का भावार्थ देखो, निर्जराधिकार का भावार्थ देखो, आचार्यों ने जो न्याय नहीं निकाला वो जयचंद जी ने निकाला है। इसका मतलब वो नहीं है कि जयचंद जी ज्यादा ज्ञानी थे, वो नहीं कहने का मतलब है, लेकिन कभी उनको विकल्प नहीं आया आचार्य को और ज्ञानी को विकल्प आ जाए और स्पष्ट कर दे, विशेष स्पष्ट कर दे, क्योंकि वो पीछे से हुए हैं, आचार्य 900 साल पहले हुए, जयचंद जी 150 साल पहले हुए होंगे, तो वर्तमान समाज को अधिक स्पष्टता हुए बिना समझ में बात नहीं आएगी, तो उनके ख्याल में आया तो और स्पष्टता कर दी। और आचार्य महाराज के जमाने में इतने समझदार लोग होंगे, ज्यादा स्पष्टता करने की आवश्यकता नहीं लगी तो नहीं किया, लेकिन जो बात आई है वो विशेष रूप से आई है तो उसका भी कीमत करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। क्या कहा? कि वह तादात्म अध्यास निवृत्ति रूप त्याग होने के लिए यह बाह्य प्रसंग का त्याग भी उपकारी है, कार्यकारी है, यानी वो कार्यकारी इसलिए कि वो स्थिरता बढ़ावे, तो स्थिरता नहीं बढ़ावे तो कार्यकारी होगा नहीं, तो शुभ राग में चला जाएगा, ज्ञानी होने के बावजूद भी शुभ राग में चला जाएगा। बाह्य प्रसंग के त्याग के लिए अंतर त्याग कहा नहीं है। देखो वो स्पष्ट कर दिया, बाह्य प्रसंग के कारण से अंतर त्याग नहीं किया है। अंतर त्याग का एक पहलू अलग है, ऐसा है, बात तो ऐसी है, तो भी इस जीव को अंतर त्याग के लिए बाह्य प्रसंग की निवृत्ति को कुछ भी उपकारी मानना योग्य है। वो इसलिए लिया है कि अगर वो स्थिरता बढ़ाता है तो उसमें त्याग तो पहले से हो गया है, तो गुणस्थान आने में देर लगेगी नहीं, वरना तो क्या है कि अंतर में पुरुषार्थ बढ़ेगा, फिर बाहर में त्याग होगा, फिर गुणस्थान आएगा। ऐसा नहीं है कि बाहर में त्याग नहीं होगा और गुणस्थान आ जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। लेकिन एडवांस में किसने त्याग कर लिया, पहले त्याग कर लिया, तो उसको पुरुषार्थ होना बाकी रहा। अंतर का पुरुषार्थ हो गया, पाय त्याग तो हो चुका है, तो उस उपेक्षा से उसको उपचारी मानना योग्य है। ऐसी बात है, बात थोड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, वरना कहना चाहेंगे कुछ और समझेंगे कुछ और, ये बात हो जाएगी। इसमें क्या है कि बाह्य त्याग पर वजन होगा, उसको थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, यथार्थ समझेगा उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिसको बाह्य क्रिया पर वजन है उनको लगेगा देखो हमारी बात किया, ऐसा हम कहते हैं वैसी बात आई, ऐसी बात तो है। नित्य छूटने का विचार करते हैं, हम तो नित्य छूटने का विचार करते हैं, और जैसे वह कार्य तुरंत पूरा हो वैसे जाप जपते हैं। वो खुद तो बात अपने पर लेना चाहते हैं कि हम तो को ये व्यवसाय धंधा है, हम तो नित्य रोजाना निवृत्ति का विचार करते हैं कि जी निवृत्ति ले ले, निवृत्ति ले ले, धंधा को छोड़ दे। 28 साल की उम्र में बहुत व्यवसाय छोड़ने का तीव्र परिणाम हो रहा है, तो कहते हैं कि नित्य विचार आता है, तो व्यवसाय छोड़ने का तो हमको नित्य विचार आता है। और जैसे वह कार्य तुरंत पूरा हो वैसे जाप जपते हैं, जाप जप जपते हैं कि कैसे जल्दी हो गए, कैसे जल्दी हो गए, कैसे जल्दी हो गए। यद्यपि ऐसा लगता है कि यह विचार और जाप अभी तक तथारूप नहीं है, शिथिल है, अपनी शिथिलता को देखते हैं, कार्य संपन्न नहीं हुआ ने, कार्य संपन्न नहीं हुआ तो मेरी शिथिलता है, क्या कहते हैं मेरी शिथिलता है,
गुणस्थान योग्य है,
कोई बात। यद्यपि मुमुक्षु को उस शिथिलता को मुख्य करना नहीं चाहिए, वरना अभक्ति हो जाएगी। वो पहले विनम्रता से बात करते हैं, सरलता से करते हैं, तो उसका गुण देखो, सरलता और नम्रता के गुण को देखो, शिथिलता के अवगुण को हमको देखना नहीं चाहिए।
उनकी साइड
हाँ, उनकी साइड से बात करते हैं, लेकिन समझने वाले को अपना स्थान का विचार करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ खड़े रह करके हमको ये बात को समझना। अतः अत्यंत विचार और उस जाप का उग्रता से आराधन करने का अल्प काल में योग करना योग्य है ऐसा रहा करता है, हमारे परिणाम मन में कैसा भाव रहा करता है कि हमको तो ऐसा भाव रहता है कि जो छूटने का विचार है और जो जाप जपते हैं उसकी उग्रता में आ जाए, उसकी उग्रता से आराधन करें और अल्पकाल में ऐसी कोई व्यवस्था भी बिठाएं, योग करें मैंने व्यवस्था भी बिठाएं। तो जिसको दो काम करना है उसको इसकी व्यवस्था बिठाने का भाव आए बिना रहेगा। जैसे मुमुक्षु है अपन ले लो, ये तो ज्ञान दशा की बात चलती है, अपन मुमुक्षु की बात करें कि मुमुक्षु को सत्संग के का आश्रय करना, सत्संग को आराधन करना वो उनके लिए आवश्यक है। अब सत्संग करने के लिए समय भी चाहिए और व्यवसाय में समय जाता है और व्यवसाय छोड़ भी नहीं सकते। क्या करना कि अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक हो और दीनता में आना नहीं पड़े तो निवृत्त हो जाना, और आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो तो उसको संक्षेप करना। क्या करना? सत्संग दुर्लभ है, व्यवसाय दुर्लभ नहीं है। सत्संग चौथे काल में भी दुर्लभ है तो इस पंचम काल में तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है, ऐसा जान करके दूसरी साइड का संक्षेप कर लेना चाहिए। और जिसको सत्संग करना है वो उसको ऐसा किए बिना रहेगा, करेगा ही करेगा, वो खुद के लिए ऐसा विचार करते हैं कि हमको भी उग्रता से आराधन करने के लिए अल्प त्याग में ऐसी व्यवस्था बिठानी चाहिए तो इस व्यवसाय से बिल्कुल निवृत्त हो जाए। वो खुद तो मुनि दशा के पुरुषार्थ में लगे हुए थे, जिसको मुनि होना है उसको तो व्यवसाय आदि छोड़ना जरूरी होता है। प्रसंग से कुछ परस्पर के संबंध जैसे वचन इस पत्र में लिखे हैं। प्रसंग वशात अभी ऐसा कोई हमारा प्रसंग है तो हमको लागू हुए ऐसी कोई बात, और आपको भी कुछ लागू हुए ऐसी बात इस पत्र में हमने लिखी है। बहुत सी बातें आई तो आपको लागू होती है वो आप ले लेना, हमारी बात हम कर चुके, ऐसी कुछ बातें लिखी हैं। वे विचार में स्फुरित होने से स्व विचार बल बढ़ने के लिए और आपको पढ़ने और विचारने के लिए लिखे हैं। पत्र में क्या खास बात है कि हमने जो वो बात लिखी वो स्वविचार बल बढ़ने के लिए लिखी है, मेरी जो बात लिखी हो तो मेरा विचार बल बढ़ाने के लिए लिखी है, और आपको पढ़ने के लिए और उस पर विचार करने के लिए लिखी है। हो सकता है कि आपका भी विचार बल बढ़े।
लिखने से विचार बल कैसे बढ़ता है?
देखो, जिसको पत्र मिला है सुभाष भाई को, उसको तो पत्र पढ़े बिना, पत्र आने से ही तो परिणाम हाँ कैसे होते होंगे
हैं?
मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का पत्र पढ़ने से तो भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन पत्र आने से, देखने से बढ़ेंगे, ऐसी बात होती है। देखो गुरुदेव कोई बीमार होते थे ना, पानगढ़ में कोई मुमुक्षु भाई बहन कोई बीमार हो गए तो गुरुदेव खुद जाते थे, खुद गुरुदेव जाते थे। तो गुरुदेव बात तो बाद में करेंगे, लेकिन वो जो बिस्तर पर लेटा हुआ है जो व्यक्ति, उनको पता चला कि अच्छा गुरुदेव पधारते हैं मेरे लिए, गुरुदेव पधारते हैं, आने के पहले पहले इनके भाव बदल जाएंगे। अच्छा मेरे यहाँ गुरुदेव पधार, मेरे लिए गुरुदेव दर्शन, मेरे दर्शन, मेरे दर्शन के लिए गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। फिर आएंगे तो देखेंगे, देखते भाव और बढ़ जाएगा, फिर बैठेंगे दो बात सुनाएंगे, बताए कि नहीं बताए। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके प्रति बहुमान होता है उनका दर्शन से और उनके वचन से अपने भाव में सुधार आए बिना रहता नहीं, ऐसी बात है, होता ही है। वो प्रश्न है स्वयं का, क्यों जो बात में रस आता है वो बात बलवान होती है कि नहीं होती है? इन बातों में खुद को रस आया, अपने को जो पूर्व तैयारी करनी है आगे बढ़ने के लिए, वो बात का जो विचार आते थे और निरंतर जाप जपते थे, वो बात लिखते लिखते उस विषय का रस बढ़ा, जो रस बढ़ा तो बल बढ़ा, रस है वो शक्ति है, बल है, ऐसे होता है। ये महान आचार्य हैं वो शास्त्र क्यों लिखते हैं? ये पत्र लिखा ना, छठे सातवें गुण स्थान में विराजमान है और मालूम है कि अभी इस गुण स्थान से आगे जाने का कोई अभी अवसर नहीं है, मालूम नहीं है। छठे सातवें गुण स्थान में जो पहुंचे मुनिराज, उनको मालूम नहीं है कि अभी आठवां गुण स्थान तो अभी आने का कोई अवसर नहीं है, आठवां आएगा तो आठ नौ दस बार फिर हो जाएगा अंतर्मुख में, लेकिन वो कोई परिस्थिति नहीं है। तो फिर शास्त्र क्यों लिखते हैं? कि अपने भाव को और बल देने के लिए लिखते हैं, रस आता है उनको। अमरचंद्र आचार्य ने लिखा समयसार की टीका में कि इस शास्त्र की, इस आगम की टीका लिखते हुए मेरी जो अनादि से कलमाशित परिणति है उसकी विशुद्धि हो जाओ। लिखा है कि नहीं लिखा? ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो, शास्त्र पढ़े, शास्त्र लिखे, उसमें उसको रस आता है, आत्मरस विशेष बढ़ता है, और आत्मरस बढ़ता है तो बल बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है और विशुद्धि होती है। हाँ सत्संग में भी ऐसी बात है, वही बात है। तो ये बाह्य क्रिया है, बाह्य साधन है, तो उसमें अकेले राग को नहीं देखना है कि लिखने का राग है, पढ़ने का राग है, बोलने का राग है, ऐसा नहीं है। उसमें इसका अंतरंग पहलू को देखना है, सिर्फ बाह्य पहलू को देखना नहीं चाहिए। अंतरंग में क्या उसको लाभ होता है वो बात देखना चाहिए। गुरुदेव ने किसी को पूछा कि साहब आप 45-45 साल से ये जो समयसार आदि के प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन आपके शिष्य में तो कोई त्याग भी नहीं करते, कोई उपवास भी नहीं करते, कोई ऐसे भी नहीं करते, प्रतिक्रमण नहीं करते, सामायिक नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, हाँ व्रत नहीं लेते। देखो भाई इसके श्रद्धा ज्ञान में क्या फेरफार हुआ वो तुमको मालूम है क्या? क्या बोले? सुनने वाले के श्रद्धा ज्ञान में क्या फेरफार हुआ और उसमें उसको कितना लाभ हुआ, इसका दर्शन मुख का अनुभव कितना कम हो गया और उसका ज्ञान कितना निर्मल हुआ, वो उनको तो तुम देखते नहीं हो पर बाह्य आचरण को देखते हो, जो चारित्र गुण के बाह्य आचरण है उसको मुख्य करते हो और श्रद्धा ज्ञान को तो तुम देखते नहीं हो। तो मूल्य तो इस भूमिका में, मुमुक्षु की भूमिका में श्रद्धा ज्ञान का मूल्य है, ऐसी बात है। परमागम शर्मा से जीव प्रदेश पर्याय तथा संख्यात असंख्यात अनंत आदि के विषय में तथा रस की व्यापकता के विषय में क्रम पूर्वक समझना योग्य होगा। कुछ और प्रश्न भी पूछे हैं सुभाग भाई ने कि जीव के विषय में, उसके प्रदेश के विषय में, पर्याय के विषय में, वो बात हुई द्रव्यानुयोग की और करणानुयोग में संख्यात असंख्यात और अनंत के जो आंकड़े हैं उस विषय में भी प्रश्न पूछे होंगे, तो उसका जवाब इस पत्र में नहीं दिया कि आगे जा करके इस विषय में आपको समझना अधिक अच्छा रहेगा, अभी इस प्रश्न में आपको उलझना नहीं चाहिए। अच्छी तरह पर्सनल ट्रीटमेंट देते थे कि आपको अभी क्या जरूर है, क्या बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो कुछ जिज्ञासा और प्रयोजनभूत विषय में हो या अपने योग्य बात नहीं हो तो उसको अभी शांत करिए, उसको मुख्य करिए नहीं, अभी जो हम कहते हैं उस पर ध्यान देना, दूसरी दूसरी बातों पर ध्यान देना नहीं है। भले वो शास्त्र की बातें हों तो भी हम जो कहते हैं उस बात पर ख्याल करो, उस पर ध्यान दो, लक्ष्य करो, दूसरी दूसरी बातों में अब मत जाओ। आपका यहाँ आने का विचार है तथा श्री डूंगर का आना संभव है, ये लिखा सो जाना है। आपने लिखा कि मैं, मेरा को बिना विचार तो है ही आपके पास आने का, वो बार बार आते थे कृपालु देव के सत्संग के लिए, बम्बई भी आते थे और जगह भी बार बार जाते थे, उसका तो जीव ही वहाँ रहता था। क्या होता था? उसका जीव वहाँ रहता था, कृपालु देव के पास उसका जीव रहता था, शरीर शैला में रहता था, जीव वहाँ रहता था, वहाँ ही लगा रहता थे, लगा रहते थे उसका। हाँ वो लिखा है प्रेम समाधि में दिया है, समाधि में लीन है ऐसे। आपका यहाँ आने का विचार है तथा श्री डूंगर का आना और उसके जो मित्र थे उसका भी आना संभव है, लिखा तो ठीक है आना, उनके लिए हाथ भर दी है। सत्संग योग की इच्छा रहा करती है, हमें भी आपके सत्संग के योग की इच्छा रहा करती है, तो जरूर आना चाहो तो आ जाना, ऐसा करके रजा दिया है आ जानिए। इस तरह से ये पत्र यहाँ समाप्त होता है।